भजते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा।
सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत के कार्यक्रम में। दूसरा अध्याय सांख्य योग, और पिछले हफ्ते हमने भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर प्रारंभ किया है अर्जुन के प्रश्नों के संदर्भ में, उसकी चर्चा प्रारंभ की। अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे कि दिव्य चेतना में स्थित एक योगी या परिपूर्ण योगी या स्थित प्रज्ञ, ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वो कैसे बैठता है, चलता है, बोलता है। और भगवान ने अपने उत्तर में पिछले हफ्ते जो हमने श्लोक लिया, प्रजाहाति यदा कामान, कि सर्वप्रथम वो जितनी भौतिक इच्छाएं हैं उनका वो परित्याग करता है, और भौतिक इच्छाओं का परित्याग करने के पश्चात उसका मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन से वो आत्मा में संतुष्टि प्राप्त करता है। तो ये सबसे पहला लक्षण भगवान ने स्थित प्रज्ञ या परिपूर्ण योगी का दिया अर्जुन के प्रश्न के संदर्भ में। अब उसे ही आगे बढ़ाते हुए आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी स्थित प्रज्ञ मुनि या परिपूर्ण योगी के लक्षण बता रहे हैं। दुखेश्वनु द्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो पिछले श्लोक में भगवान ने स्थित प्रज्ञ मनुष्य की चरम स्थिति आत्मा में संतुष्टि ये बताई, और आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं स्थितधीर मुनिर उच्यते। उच्यते का अर्थ है वो मुनि कहलाया जाता है या वो स्थित प्रज्ञ कहलाया जाता है। कौन? जो कि दुखों से उद्विग्न नहीं होता। इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति यदि उद्विग्न होता है तो दुखों की वजह से, तो जो दुखों से उद्विग्न नहीं होता या परेशान नहीं होता, हमारी भाषा में, तो जो दुखों से परेशान नहीं होता और जो सुखों से लालायित नहीं होता, ये दोनों स्थिति में वो अविचलित रहता है। He remains steady in misery and happiness both. ये पहला लक्षण भगवान बता रहे हैं आज के श्लोक में। और फिर वीत राग भय क्रोध। वीत का अर्थ होता है छोड़ देना या छुटकारा पा लेना। किससे छुटकारा पा लेना? आसक्ति, भय और क्रोध, इन तीन चीजों से जिसने छुटकारा पा लिया है वो है स्थितधीर मुनि, इक्विपॉइज्ड योगी, स्टडी माइंड, उसका मन जो है वो स्थिर है। स्थितधीर मुनिर उच्यते। तो ये है आज के श्लोक का अनुवाद। तो हमारे आज के चर्चा के विषय रहेंगे पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध, भौतिक संसार का स्वरूप क्या है। आसक्ति भय एवं क्रोध की व्याख्या जो भगवान इस श्लोक में किए हैं, स्थिर मन वाले मुनि के अंत में क्या लक्षण भगवान बता रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने उत्तर प्रारंभ किया था, जिसमें भगवान ने कहा विशुद्ध एवं दिव्य चेतना को योगी कैसे प्राप्त करता है, कैसे? भौतिक इच्छाओं का परित्याग सबसे पहले करता है, तदनंतर उसका मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होने के वजह से वो आत्मा में संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। ये है दिव्य चेतना को एक योगी जब प्राप्त करता है। और आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं विशुद्ध एवं दिव्य चेतना वाले मुनि का अविचलित मन, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान जब इन दो श्लोकों में मन के विषय में बता रहे हैं तो पिछले श्लोक में इतना ज्यादा इस अविचलित स्थिति को नहीं बताया जितना आज के श्लोक में बताया। अविचलित, अविचलित का अर्थ है कि स्टेडी, विचलित अनस्टेडी। जैसे नीति का एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कलयुगी मन के बारे में बताया, केवल भौतिक संसार के मन के बारे में नहीं, भौतिक संसार में कलयुग और कलयुग में हम जो 21st सेंचुरी में अपने मन के साथ जी रहे हैं, तो 21st सेंचुरी के मन की अविचलित स्थिति कैसी होगी, कल्पना कीजिए। इस श्लोक में हम सबको इस बात की कल्पना दी जा रही है। रेडी? तो इस श्लोक में कहा गया है, ये सब हमारे बारे में है, तो हमें लग रहा होगा कि हाँ कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मन इतना अविचलित रहता है बेचारा, उसके बारे में श्लोक कहा गया। तो श्लोक सुनाने से पहले ये हम क्लियर कर रहे हैं कि हमारा, हम लोग जो कलयुग में 21st सेंचुरी के स्पीशीज हैं, तो इसमें कहा गया है मर्कटस्य सुरापान, सबसे पहले मन की तुलना एक बंदर से की। अब देखिए बंदर एक ऐसा जानवर है, जैसे ही आपके मन में अभी बंदर का ख्याल आया तो क्या आपके मन में कोई ऐसे जानवर का ख्याल आया कि जो बहुत शांत स्वभाव का, पीस लविंग एनिमल, मंकी? बंदर का स्वभाव क्या है? अविचलित, कभी इस पेड़ पे तो कभी उस पेड़ पे, उस पेड़ में भी कितनी डालियों पे हर एक मिनट में यहां वहां वो जाता फिरता है। तो सबसे पहले हमारे मन की तुलना बंदर से की गई है, बंदर रूपी ये मन, और उसके ऊपर सुरापान, इस बंदर को किसी ने 2-3 पेग नीट, इस बंदर को सुरापान करा दिया, नशा। तो सोचिए पहले से बंदर का स्वभाव इतना हर समय विचलित, उसके ऊपर सुरापान किया हुआ ये बंदर, अब क्या इसके हाल होंगे, है ना? फिर इतना ही नहीं, आगे नेक्स्ट लेवल, वृश्चिक तद्दमस्त्र नहीं। वृश्चिक कहते हैं बिच्छू। तो अब इस सुरापान किए हुए बंदर को बिच्छू ने काट लिया, तो क्या स्थिति होगी अब इसकी? बिच्छू जब काट लेता है तो व्यक्ति इतनी जोर जोर से चिल्लाता है और वो जो उसको तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, उसके वजह से भागता फिरता है कई बार, तो जस्ट टू रिलीज रिलीफ फ्रॉम दैट पेन. तो इतना ही नहीं, नेक्स्ट लेवल बताया गया है, तदंतर भूत संचार. अब इसके अंदर भूत संचारित हो गया है, यदवा तदवा भविष्यति. क्या हाल होगा ऐसे बंदर का कि जिसने सुरापान किया है, बिच्छू ने डंक मारा है और फिर उसके अंदर भूत संचारित हो गया. तो ये है हमारा कलयुगी मन. वेलकम टू द 21st सेंचुरी. तो इसलिए इस मन को, इसकी विचलित स्थिति से अविचलित स्थिति पर हमें लाना है, जो कि आज भगवान यहां पर अर्जुन को बता रहे हैं. तो सबसे पहले वो लाने से पहले हमें जो भौतिक संसार में हम रह रहे हैं उसका स्वरूप जानना बहुत आवश्यक है. और भौतिक संसार का स्वरूप बताया गया है, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ये भौतिक संसार के दो पहलू हैं, सुख और दुख. तो भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं, दुखेश्वनु द्विग्न मना सुखेशु विगत स्प्रह, कि वो स्थितधि मुनि हैं जो कि दुख से उद्विग्न नहीं होता और सुख से प्रभावित नहीं होता. अब इस भौतिक संसार में हमारी स्थिति कई बार अक्सर ये हो जाती है कि जब हम दुखी होते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में चले जाते हैं कि कुछ लेना देना नहीं है, संसार भाड़ में गया, आत्महत्या करेंगे. तो जैसे हमारा एक मित्र था, तो जब दुखी होता था तो बॉटल खोलता था और सुखी होता तो भी बॉटल खोलता था. जैसे कि भक्त हैं, चाहे दुखी हैं चाहे सुखी हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते, वैसे ये भी वही प्रिंसिपल फॉलो कर रहा था, लेकिन केवल भगवान नहीं थे तो दुख में सुख में वो अपने अनुसार उसका जो भी उपाय ढूंढ रहा था. और सुख में जब हमारे पास सुख आता है तो हम उस सुख से इतना प्रभावित हो जाते हैं, लालायित हो जाते हैं. लेकिन एक स्थितधी मुनि जो है वो जानता है कि ये जो दोनों हैं, सुख और दुख, ये एक ही सिक्के के दो बाजू हैं. तो ये कभी आएंगे और कभी जाएंगे, और जो जाएंगे वो फिर आएंगे, जो फिर आया है फिर जाएगा. जाते से ही ध्रुव मृत्युर ध्रुव जन्म मृतस्य च, भगवान ने इसी अध्याय में कहा कि जो जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त होगा और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है वो फिर अवश्य ही जन्मेगा. तो अंग्रेजी में एक फ्रेज है, पेंडुलम इफेक्ट जिसे कहते हैं. तो पेंडुलम इफेक्ट होता है कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम. आपने घड़ी का वो पेंडुलम देखा होगा, हाँ, वो जब घड़ी चलती रहती है तो वो पेंडुलम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाता रहता है, वो कभी बीच में टिकता नहीं. जब घड़ी बंद हो जाती है तब बीच में दिखता वो. तो वैसे ही जब ये भी बंद हो जाता है मशीन, जब तक ये मशीन चल रहा है तब तक इस भौतिक संसार का स्वरूप है ये पेंडुलम इफेक्ट, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस. और कई बार जैसे प्रभुपाद ये उदाहरण दिया करते थे कि इस भौतिक संसार में हम जो सुख कहते हैं वो दो दुखों के बीच का जो अंतराल होता है, कि एक दुख जो बीत चुका है और एक दुख जो आने वाला है, इसके बीच में जो अभी दुख नहीं आया है तो उसको हम सुख मानते हैं। ये नहीं कि सुख नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो सुख टेम्पररी है, इसलिए उसमें प्रभावित हो जाना ये एक बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं है। तो इसलिए भगवान पहले भौतिक संसार का स्वरूप आज के श्लोक में संकेत कर बता रहे हैं कि भौतिक संसार का स्वरूप कैसे, सिक्के के दो बाजू जैसे। तो ये उदाहरण हम कल भी ले रहे थे हमारे क्लास में, राधानाथ महाराज ने एक उदाहरण ये दिया था, लाइफ इज लाइक सी सॉ, आई सी एंड देन आई सॉ, आई सी हैप्पीनेस देन आई सॉ हैप्पीनेस, गया क्योंकि हैप्पीनेस गया, आई सी मिजरी आई सॉ मिजरी, तो सी सॉ। हाँ, हमें बचपन में ये सब खेले ना, तो इसमें होता क्या है कि देखो ये बालक ऊपर गया है और ऊपर जाते बहुत लालायित हुआ कि मैं अब ऊपर चला गया। तो कई बार इस भौतिक संसार में हमारी स्थिति क्या होती है कि सफलता प्राप्त करते हैं, बहुत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, यश प्राप्त करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं, और फिर हमारी स्थिति प्रकृति क्या करती है, अब ऊपर। लेकिन यह भौतिक संसार का स्वरूप है कि किसी एक को ऊपर जाने के लिए किसी एक को नीचे जाना पड़ता है, यह है भौतिक संसार का स्वरूप। जैसे एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे थे कि आपने एयरफोर्स की नौकरी क्यों छोड़ी, इतनी अच्छी नौकरी थी क्यों छोड़ी। मैंने कहा वैकेंसी क्रिएट करने के लिए। तो किसी को नौकरी मिलती है मतलब किसी को नहीं मिलती उसके। अगर कोई फर्स्ट आया है क्लास में तो मतलब किसी को सेकंड आना पड़ा है उसको फर्स्ट लाने के लिए। तो अब ये जो सीसॉ इफेक्ट है, ये भगवान भगवद गीता में कहे हैं अशाश्वतम, जिसका अर्थ है टेम्पररी। That in this material world, whether happiness or whether it is distress, do not take that seriously, because soon it is going to change. इसलिए एक मेरा friend, वो मुझे हाल ही में वो लंदन में मिला, तो उसने मुझे कहा कि जब उसका हाल ही में विवाह हुआ था, तो उसने कहा कि मेरा हाल ही में विवाह हुआ है और मेरा रियलाइजेशन ये है दैट मैरिज इज लाइक यू नो अ मोबाइल फोन एंड बस, इफ यू हैव वेटेड अ न्यू मॉडल वुड हैव कम, और बस छूट भी जाए तो दूसरी बस आ जाती है। तो उसका रियलाइजेशन तुरंत ये था, उसने कहा कि कैसे हम जब किसी एक भोग के ऊपर अपना मन केंद्रित करते हैं तो प्रकृति दो चीजें करती, ये उसका रियलाइजेशन था, दो चीजें प्रकृति करती है, या तो वो विषय वस्तु को ले जाएगी समय के काल के अनुसार, या विषय वस्तु है तो आपको ले जाएंगी, इधर द ऑब्जेक्ट विल बी गॉन आफ्टर सम टाइम ऑफ योर एंजॉयमेंट, और इफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स यू विल नॉट रिमेन, यू विल बी गॉन। सो दैट इज द वर्किंग ऑफ टाइम फैक्टर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि बहुत समय तक आप ऊपर हैं और किसी और के वजह से बहुत समय तक ऊपर हैं, और कई बार कोई बेचारा किसी दूसरे के वजह से बहुत समय तक नीचे। तो हमारा मन भ्रमित क्यों होता है, क्योंकि जब बहुत समय तक हम किसी एक स्थिति में रहते हैं तो भगवान यहां बता रहे हैं कि बहुत समय तक एक स्थिति में रहने के बाद हमें उस स्थिति से आसक्ति होना शुरू हो जाती है. We start relating to that situation, whether it is happy or miserable, over a period of time. और इसलिए भगवान ने भौतिक संसार बनाया, इसलिए अशाश्वत इसलिए बनाया, बहुत भगवान का एक वरदान है हमारे ऊपर कि हम फिर कहीं पर भी चाहे सुख में या दुख में, क्योंकि दोनों ये जो सुख दुख हैं इस भौतिक संसार के, ये हमें इस भौतिक संसार में ही रखते हैं. इसलिए हम सेटल न हो पाए, एक भगवान का वरदान है कि हम न तो सुख में न दुख में सेटल हो पाए. इसलिए दोनों का मिश्रण, कॉम्बिनेशन, ये सीसॉ इफेक्ट, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. इसलिए प्रभुपाद अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि बड़े बड़े जो डिक्टेटर हुए, बड़े बड़े राजा हुए, वेर आर दे नाउ? हिटलर किल्ड so many Jews, but who killed Hitler? The time factor. Stalin, all these big dictators, they killed so many people, and you know, at that particular time their empire was something which was invincible, but ultimately they were killed by the time factor. So yahan par ek acha वापस से राधानाथ महाराज का एक कोट मैं कल पढ़ रहा था. इन ऑर्डर फॉर वन टीम टू विन, मेनी हैव टू लूज. तो जब भी कोई टीम जीतती है तो सारे कैमरा फोटो वो जीती हुई टीम के ऊपर है ना. जैसे बहुत सालों बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीती, कितने साल वर्ल्ड कप में भाग लेती थी लेकिन मायूस होकर, हम भी मायूस होकर उनका वेलकम बैक करते थे जहां से भी आते थे. पिछले दो साल पहले एक बच्चे के पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा था तो बच्चे को पूछा कि तू किसके साथ रहेगा, मां के साथ रहेगा, पिताजी के साथ रहेगा? तो पिताजी के बारे में पूछा, आई विल नॉट स्टे with my father because he beats me. तो मदर के बारे में पूछा, I will not stay with my mother also because she also beats me. So whom will you stay with? Indian cricket team. Because they don't beat anyone. तो महाराज ये पॉइंट पर बता रहे थे राधानाथ महाराज कि एक टीम जब जीतती है तो कितने सारे टीम बाकी हारती हैं. तो क्या समझ में आ रहा है कि एक दृष्टिकोण से वो जो हारी हुई टीम है वो भी एक कारण बनी ये टीम को जिताने के लिए, है ना. तो उनको भी मिलता है कुछ ना कुछ कि हां आप कम से कम इतना तो किए कि हारे ताकि ये जीते. तो भौतिक संसार बना हुआ इसी प्रकार से, ये सुख और दुख, ये लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय. तो इसके संदर्भ में एक सुंदर कथा है. एक बार एक राजा, उसका 50वां वो बर्थडे था, सालगिरह 50वां साल, उसका उसकी सालगिरह थी. तो उसने सोचा कि ये साल कुछ 50 क्या गोल्डन जुबली बोलते हैं, गोल्डन जुबली है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए. तो उसने उसके राज्य के जितने कैदी, बोले कि कैदियों को मैं रिहा कर दूंगा लेकिन एक शर्त पर, कि मुझे ये कैदी कोई ऐसा गिफ्ट दे. देखो इसका जो कंडीशन था वो भी कितना पेचीदा था. तो इसने कंडीशन रखा कि एक ऐसा गिफ्ट ये कैदी मुझे दें कि वो गिफ्ट मेरे पास जब हो, मैं जब सुखी हूं तो मैं दुखी हो जाऊं, जब मैं दुखी हूं तो मैं सुखी हो जाऊं. इट शुड मेक मी हैप्पी व्हेन आई एम मिजरेबल एंड मिजरेबल व्हेन आई एम हैप्पी. ऐसा गिफ्ट. तो अभी सारे कैदी भाई यही कंडीशन रखना था. अरे सीधे बोल दो कि नहीं छोड़ना है हमको. ये झांसे क्या दे रहे हो. तो उनमें से एक जो सभी कैदियों का सरदार पिछले 20 साल से वहां पर वो रिकॉर्ड होल्डर था, तो उसने कहा नहीं, मैं सारे कैदियों को रिहा करवाऊंगा. और उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और वो एक जौहरी के पास गया और राजा के लिए एक सोने की अंगूठी बनवाई. और फिर उस सोने की अंगूठी को उसने वो गिफ्ट रैप किया. और फिर जिस दिन राजा की बर्थडे थी तो सारे कैदी, अब ये सबसे वरिष्ठ कैदी, हाथ में वो गिफ्ट लिए और पूरा राज्य, सारा मंत्रीगण, राजा का राजा, राजा की पत्नी, सबको आतुरता से कि कैसा गिफ्ट होगा, क्या है इसके अंदर. फिर खोला तो एक अंगूठी. तो राजा, ये क्या है, ये कैसे मेरे शर्त को पूरा करेगा. तो उसने कहा इस पे पढ़ो क्या लिखा है. तो अंगूठी पहनी राजा ने और उस अंगूठी पे लिखा था, इवन दिस सिचुएशन विल कम टू अ पास. ये जो तुम्हारी स्थिति है ये भी बदल जाएगी. ये हिंदी में उसका अनुवाद. तो राजा ने कहा मतलब इसका, जब आप सुखी होंगे तो अंगूठी में पढ़ना कि ये जो आपकी सुखी सुख की जो स्थिति है जाने वाली, मतलब दुखी हो जाएंगे फिर आप, कि जो आपकी पार्टी चल रही है वो खत्म होने वाली है. और जब आप दुखी होंगे तब वापस इसी की अंगूठी में जो मैंने लिखा है ये लाइन पढ़ना, क्या, ऑल थिंग्स मस्ट कम टू अ पास, कि ये आपकी दुख की स्थिति भी टेम्पररी है, ये भी जाने वाली है. तो उसे समझ में आया कि हाँ ये है उनके शर्त के अनुसार. उसने फिर सभी कैदियों को रिहा किया. तो वो जो वरिष्ठ कैदी, उसने अन्य कैदियों को कहा ये सब हम पे भी लागू है, ये मत समझना अभी हमको रिहा कर रहे हैं तो वापस अंदर नहीं आ सकते. ऑल थिंग्स मस्ट कम टू अ पास. तो भगवान जो पहली लाइन में यही बात को दर्शा रहे हैं, दुखेश्वनु द्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह. और आगे भगवान ने कहा कि जो स्थितधी मुनि है वो आसक्ति, भय एवं क्रोध, राग, भय, क्रोध, वीत, इन सब से जो मुक्त है. तो इनकी व्याख्या क्या है. आसक्ति दो प्रकार की, एक तो भौतिक और एक आध्यात्मिक. तो जो आध्यात्मिक आसक्ति है, जैसे कि भगवान के शुद्ध भक्त ब्रजवासी गण इत्यादि पांडव, जो भगवान श्री कृष्ण में इतना आसक्त, तो आसक्ति बुरी नहीं, लेकिन आसक्ति जो कि हमारे मूल उद्देश्य से हमें दूर ले जाए, वो आसक्ति हमारे लिए हानिकारक या खतरनाक. और जो आसक्ति हमें हमारे मूल उद्देश्य, जो कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना, उसके हमें निकट ले जाए, वो है आध्यात्मिक आसक्ति, या वो है हमारे लिए अनुकूल. तो भगवान यहां पर भौतिक आसक्ति की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी भौतिक आसक्ति से जो दूर हुआ है. क्यों भगवान आसक्ति के विषय में सबसे पहले कह रहे हैं श्लोक में, क्योंकि अर्जुन जो इन कौरवों के प्रति आसक्ति दिखा रहे थे वो भौतिक आसक्ति थी. वो पूरा शारीरिक स्तर पर उसकी अर्जुन की आसक्ति थी। तो अब यदि हम भौतिक आसक्ति को लें तो भौतिक आसक्ति से ये दो चीजें पनपती हैं, भय और क्रोध। तो भगवान ने तीन चीजें बताई, आसक्ति, भय और क्रोध। तो हमारे आचार्यों ने इसका विश्लेषण इस प्रकार से किया। तो क्या समझे आप, आसक्ति का कनेक्शन भय और क्रोध से क्या है? फियर ऑफ लूजिंग व्हाट? यस, आसक्ति जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति में आसक्त रहते हैं और जब हमारी आसक्ति पूरी होती है, कोई वस्तु से आसक्त है, उसे वो वस्तु प्राप्त हो गई, आसक्ति की वजह से उसको वो वस्तु प्राप्त हो गई, तो अब उसे भय रहता है कहीं ये वस्तु छूट ना जाए। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी बर्मिंगहैम, यूके में एक जगह है बर्मिंगहैम, कैडबरी चॉकलेट का फैक्ट्री वहां पर है, मेन हेडक्वार्टर बर्मिंगहैम में। तो वहां पर एक डिवोटी, वो मेरे बगल में बैठे थे और जगन्नाथ जी का लंबा चौड़ा फीस्ट सर्व हुआ था। तो फीस्ट में, जगन्नाथ जी की फीस्ट में कुछ 15 आइटम थे, मतलब सबके लिए 15 आइटम। जगन्नाथ जी के लिए तो 56 उन्होंने ऑफर किए थे, लेकिन बाकियों के लिए 15 आइटम और एक एक ऐसे 4-5 स्वीट और 4-5 प्रकार की सब्जियां, ये वो सब कुछ। तो ये डिवोटी, हम लोग जब बैठे थे तो ये डिवोटी जब हम लोग शुरू किए खाना, तो उसके कुछ समय बाद ये बोले कि जब इतने आइटम होते हैं ना तो ज्यादा मन एंग्जाइटी में जाता है, कौन सा खाएं कौन सा छोड़ें। उनका ये रियलाइजेशन था कि एक आइटम उनके प्लेट में रखा नहीं कि उनका मन दूसरी बाल्टी पे था जो अभी लाइन में आ रही है, और उसके पीछे तीसरी बाल्टी, क्योंकि देख लिया वहां पर वो सर्विंग हो गया। और हमारा काली वो 20-25 मिनट यही चर्चा चल रहा था कि कैसे ये मन बोला, देखो अभी उधर उसने वो डाल दिया तो यहां पर मेरा लालसा बढ़ गई, तो इधर जो ऑलरेडी डाला हुआ है उस पर ध्यान नहीं मेरा, तो मैं उसको तो एंजॉय नहीं कर रहा, वो जो अभी तक नहीं आया है उसके पीछे भाग रहा हूं, और जब तक वो आएगा फिर उसके पीछे जो तीसरी बाल्टी आएगी। तो मैंने उनको पूछा, कल्पना करो कि एक दो तीन बाल्टी कोई आपको डाले ही नहीं कुछ, फिर क्या होगा? तो उसने कहा फिर तो कत्लेआम। तो ये था कि बाकियों के प्लेट में जो जो आ रहा है फिर अंदर वो लालसाएं। तो इसी को अगर हम एक्सपैंड करें तो बगल वाले के घर में 3 गाड़ियां आ गई, हम अब तक बस में ही सफर कर रहे हैं, बगल वाले के घर में ये आ गया वो आ गया, तो फिर वो कंपैरिजन। और जो हमारे पास है, चाहे साइकिल ही क्यों ना हो, उसका भी भोग नहीं कर सकते हम, जिसके लिए खर्चा किया उसका भी भोग नहीं कर सकते, लेकिन चिंता खाली उसके घर में 2 गाड़ियां या 3 गाड़ियां कैसे। तो जब आसक्ति किसी के मन में घर बना लेती है, when attachment enters into someone's mind, it leads into 2। तो जो मिला हुआ है वो खो जाने का भय, और जब खो जाता है तो क्रोध, खो जाने के बाद फिर क्रोध, और सबसे पहले क्रोध करते हैं ऊपर उंगली जाती है सीधा। जब मिला था तब उंगली ऊपर नहीं गई, तब सारी उंगलियां यहां कि मैंने परिश्रम किया, मैंने मेहनत की, मेरे वजह से, मैं जैसे बकरी मैं करती। तो जब वो सब छिन जाता है जो कि होने वाला है इस संसार में, जैसे टेम्पररी नेचर, तो फिर उसका क्रोध उसमें प्रारंभ होता है दिखना। तो एक स्थितधि मुनि जो है वो पहले से ही जान लेता है कि मुझे जो ये भय और क्रोध के जो माता पिता हैं या पेरेंट्स, क्या है आसक्ति, ये आसक्ति में नहीं गिरना है, क्योंकि जैसे ही उस आसक्ति में मैं गिरूंगा तो ये भय और क्रोध, ये जो दो बच्चे हैं, ये बच्चों को संभालना पड़ेगा। तो अब बताया गया है कि भौतिक आसक्ति जो है, मनुष्य को लगता है कि मैं भौतिक चीजों में जितना आसक्त रहूंगा उतना मैं सुखी रहूंगा, उतना मैं बंधन मुक्त रहूंगा। लेकिन भगवद गीता का दृष्टिकोण यह है आज के श्लोक का कि जितना कोई व्यक्ति भौतिक आसक्ति अपने दिमाग में मन में रखता है उतना ज्यादा वो बंधता जाता है, बंधता जाता है, बंधता जाता है, और वही इस भौतिक संसार में बंधन का कारण एक कारण है और उसे रखता है इस भौतिक संसार में बांध के। जैसे जनानिवास प्रभु वो लंदन में प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने कहा 3 words which keep us in this material world, I like it. These are the 3 words which keep us in this material world. I like it. And 3 words which can free us from this material world. Hare Krishna Ram. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram Hare Hare. तो जब तक हम आसक्तियों में आसक्त रहेंगे तब तक ये बंधनों को हम बांधते रहेंगे। तो ये एक और प्रसिद्ध कथा है अष्टवक्र मुनि इनके जीवन में। तो अष्टवक्र मुनि ये 8 जगहों पर ये वक्र थे, मतलब ही वॉज बेंट इन 8 places। कृष्ण तो केवल त्रिभंग है, ये 8 जगहों पर अष्टवक्र मुनि, लेकिन बहुत बड़े विद्वान अष्टवक्र मुनि थे। तो ये कथा, ये घटना महाराज जनक के राजमहल में हुई। तो महाराज जनक एक दिन उन्होंने अपने विद्वत सभा, इंटेलिजेंसिया, तो विद्वत सभा से महाराज जनक ने पूछा कि मोह माया से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो अब राजा ने पूछा है, महाराज जनक ने पूछा है, तो पूरी विद्वत सभा लग गई, बड़े बड़े ग्रंथ पोथियां खोले, उत्तर महाराज को देना है। तभी अष्टवक्र मुनि ने प्रवेश किया। तो अष्टवक्र मुनि प्रवेश किए तो अब सभी अष्टवक्र मुनि जो इतना बड़ा विद्वान मानते थे, और वो थे भी इतने बड़े विद्वान, अष्टवक्र गीता कर एक उन्होंने लिखी। तो अभी महाराज जनक ये सोचे कि यही प्रश्न क्यों ना इनको पूछा जाए, ये इस समय यहां पर आए हैं। तो उन्होंने अष्टवक्र मुनि से प्रश्न पूछा, मोह माया से कैसे, मतलब आसक्तियों से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो अष्टवक्र मुनि सबसे पहले कहे कि आप अपने सिंहासन से नीचे उतरिए और एक निचला आसन लीजिए, क्योंकि ज्ञान पानी की तरह ऊपर से नीचे बहता है। तो यहां पर आप देखोगे अष्टवक्र मुनि को अपने सिंहासन पर बिठाए और महाराज जनक वो निचला आसन लिए, और फिर उन्होंने अष्टवक्र मुनि से पूछा वही प्रश्न, अष्टवक्र अब पूछो क्या प्रश्न है। आसक्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए, मोह माया से कैसे दूर हुआ जाए। अष्टवक्र मुनि ने जैसे ही प्रश्न सुना, वो सिंहासन पे खड़े हुए और राजमहल से बाहर दौड़ने लगे। पूरी विद्वत सभा खड़ी हुई, अष्टवक्र मुनि बाहर क्यों भाग रहे हैं, ये कुछ गलत पूछ रहे हैं क्या इन्होंने, कोई पता नहीं शायद अपमान हो गया इनका, क्या बाहर क्यों भाग रहे हैं। तो सभी पीछे पीछे भाग रहे हैं इनके, महाराज जनक भी पीछे पीछे। और बाहर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष, अष्टवक्र मुनि उसे आलिंगन कर लिए, तो सभी देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, वृक्ष को आलिंगन कर रहे हैं। और वृक्ष को आलिंगन करने के पश्चात अष्टवक्र मुनि चिल्लाने लगे, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और ये उनका उत्तर था, बहुत ग्राफिक उत्तर दिया उन्होंने। महाराज जनक का प्रश्न था आसक्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए, और ये उत्तर अष्टवक्र मुनि का था, उस बरगद के वृक्ष को आलिंगन करते हुए वो चिल्ला रहे हैं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कि हम पकड़े हुए हैं आसक्तियों को, इस भौतिक संसार के मोह माया को, और फिर जब हम परेशान हो जाते हैं तब प्रश्न पूछते हैं कि ये आसक्ति मेरे जीवन में आई कहां से। तो इसी के संदर्भ में अष्टवक्र मुनि एक उदाहरण देते हैं, तोते का। तो तोते का उदाहरण देते हैं कि शिकारी जब तोते को पकड़ना चाहता है, किस लिए, बेचने के लिए, है ना। आप देखोगे पिंजड़ों में तोते बंद, तो जब तोतों को शिकारी बेचता है तो वो कभी उस तोते को अपने बाण से नहीं मारता, क्योंकि बाण से मारेगा तो फिर उसमें घाव हो जाएगा तो कौन खरीदेगा। तो इसलिए तोते को पकड़ने के लिए वो एक वृक्ष से रस्सी, एक टहनी से रस्सी को बांधता है, और उसके बांबू के अंदर वो रस्सी पिरोता है, और उस टहनी से झूला, जैसे झूलन यात्रा चल रही ना भगवान की, वैसे तोते के लिए झूला बनाता है। जैसे ही वो तोता उस झूले पे आके बैठता है, उस बांबू के ऊपर आके बैठता है, तो घूमने लगता है और उसके वजन से घूमता है, तो तोते को लगता है मैं नीचे गिर रहा हूं और कष्टा पकड़ता है। जितना वो और कष्टा पकड़ता है उतना वो और उसमें घूमता जाता है, घूमता जाता, जितना घूमता है उसको लगता है मैं नीचे गिर रहा हूं और कष्टा पकड़ता है। और तभी शिकारी आता है पीछे से, तोते को पिंजड़े में डाल देता है पकड़ के। तो ये उदाहरण अष्टवक्र मुनि देते हैं कि जैसे तोता वो भूल जाता है कि उसके अंदर उड़ने की शक्ति है, वो थोड़ी नीचे गिर सकता है, तो वो भ्रम के वजह से वो पकड़ कर रखता है और टाइट पकड़ कर रखता है उसे। द पैरट फॉरगेट्स इट्स ओन एबिलिटी टू फ्लाई and can free itself just by releasing. अगर केवल, अष्टवक्र मुनि ने कहा, केवल अगर वो अपने पंजे छोड़ दे तो वो अपने आप उड़ना शुरू हो जाएगा उसका, लेकिन क्योंकि वो पकड़ कर रखता है उसे, तो उस आसक्ति के वजह से वो बंधन या पिंजड़े के अंदर जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण वो महाराज जनक को दे रहे हैं, जब महाराज जनक ने प्रश्न पूछा कि आसक्ति या मोह माया से कैसे छुटकारा पाया जाए। और फिर उन्होंने कथा सुनाई, तो तोते के बाद अब ऊंट की व्यथा, ऊंट की कथा के साथ ऊंट की व्यथा। तो ऊंट की व्यथा या ऊंट की कथा यह थी कि एक दो व्यक्ति ट्रैवलर्स, वो अपने ऊंट के साथ रेगिस्तान में एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाया करते थे, उनका बिजनेस था जो भी, उस रेगिस्तान का बिजनेस। तो ऊंट पे सारा अपना माल लाद कर वो एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाया करते थे। तो हुआ क्या, इनके पास 40 ऊंट थे। कितने? 40 ऊंट थे इनके पास। तो वो जा रहे थे, लेकिन बीच में इतना बड़ा रेगिस्तान आया कि चलना मुश्किल हो रहा था। तो रात्रि में उन्होंने सोचा कि हम अपना तंबू वगैरह इसी रेगिस्तान में लगाकर सुबह अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, ऊंट भी बहुत थक चुके हैं। तो जो मालिक था ऊंट का, कितने ऊंट, 40 ऊंटों का जो मालिक था, उसने देखा कि रात को वो ऊंट को रस्सी से बांध कर रखता था ताकि ऊंट यहां वहां रात में कहीं चले ना जाए। लेकिन उसने देखा कि ऊंट है 40, लेकिन उसके पास रस्सी है केवल 39। कितने? 39। कैमल्स वर 40, बट ही हैड ओनली 39 सेट ऑफ रोप्स। तो अब कैसे, उसने अपने मित्र को कहा कि भाई अब एक ऊंट तो अवश्य ही रात को वो चला जाएगा कहीं। तो मित्र ने कहा नहीं 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 नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा, मैं तुमको एक तरकीब बताता हूं। तो उसने क्या तरकीब बताई, उसने कहा कि सबको लाइन में तुम खड़े कर दो, सारे ऊंट को, और एक फर्स्ट ऊंट से लेके तुम 39 ऊंट तक उनकी रस्सी बांधो, और फिर जब 40वां ऊंट के सामने तुम आओगे तो केवल नाटक करो रस्सी बांधने का। तो क्या, उससे क्या होगा, तुम करो। तो जितने 39 ऊंट थे उनको तो जो रस्सी थी बांध दी, और जो 40वां ऊंट उसमें खाली नाटक किया, उसने रस्सी बांध दी। और फिर सुबह उठकर जब देखा तो सारे 40 के 40 ऊंट ऐसे बंधे हुए अवस्था में। उसने कहा वाह, तुम्हारी तरकीब तो काम की। तो उसने पहले जो पूरे 39 ऊंट थे उनकी रस्सी खोल दी, सारे खड़े हो गए, लेकिन ये 40वां ऊंट ये खड़ा ना हो तो इसको ये पीछे से मार रहा है, अरे सुबह हो गई अभी, चलो उठो खड़े हो। तो उसने मित्र ने कहा नहीं 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 नहीं, तुमने बांधने का नाटक किया था, अब खोलने का नाटक करो। You had pretended to tie him, now pretend to untie. Then only he will get up. क्योंकि उसके मन में ये है कि मैं बंधा हुआ हूं। तो हमारी भी स्थिति कई बार ऐसी होती है कि ये जो भ्रम है इस भौतिक संसार का, इस भ्रम में हम अपने आप को मुक्त मान रहे हैं, जबकि है नहीं। और कई बार हमारी स्थिति ऐसी होती है कि भगवान अवतार लेके हमें मुक्ति का द्वार दिखा देते, खोल भी देते हैं, लेकिन फिर भी हम वहां से मुक्त नहीं हो पाते। जैसे हमारे परदेशी प्रभु, उनके घर में एक तोता था, ऐसे बहुत सालों से था वो तोता। तो हम वहां पर जब देखे तो मैंने कहा इसको मुक्त करना चाहिए, क्यों इसको पिंजड़े में बांध रखा। तो वो कितने सालों से उस पिंजड़े में था, उस तोते को बाहर निकाला, वापस पिंजड़े में जा रहा था। उसको खुला आसमान दिखा रहे थे, छत पे लेकर गए, लेकिन फिर बार बार पिंजड़े के अंदर जा रहा। तो मुझे यही लग रहा था कि हमारी भी स्थिति ऐसी है। चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण हर वर्ष जन्माष्टमी हम लोग मना रहे हैं, भगवान अवतरित होते हैं और मुक्ति का द्वार हमारे लिए न केवल हमें दिखाते हैं, खोल कर जाते हैं। और कई बार हम एक स्टेप बाहर ले तो वापस अंदर। तो क्यों? क्योंकि भगवान जो बता रहे हैं आज के श्लोक में कि इस भौतिक संसार में चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे वो दुखद स्थिति हो या सुखद स्थिति हो, उसमें ज्यादा संग करने के वजह से व्यक्ति उस आसक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। इसलिए जब हम आसक्ति की बात करते हैं तो आसक्ति, भगवान बोल रहे हैं कि वो मोह है, और मोह वो बंधन का कारण बनता है। इसलिए अर्जुन जो भी प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को जो बता रहे थे कि कैसे धर्म शास्त्र के आधार पर मुझे, इसलिए देखिए यदि हम केवल पहला अध्याय भगवद गीता का पढ़ें तो हमें लगेगा कि यही चरम उपदेश है भगवद गीता का, क्योंकि अर्जुन के कितने बड़े विचार, बड़े मन वाला अर्जुन है कि दुर्योधन को क्षमा करने के लिए रेडी है, बड़े मन वाला है। तो कई बार इस भौतिक संसार में भी बहुत से लोग फिलॉसफी शुरू करते हैं बोलना, जैसे अर्जुन फिलॉसफी बहुत बोल रहे थे और भगवान केवल पहले सुन रहे थे, और फिर भगवान ने कहा कि तुम पांडित्य तो दिखा रहे हो लेकिन वो केवल एक भ्रम है पांडित्य का। जैसे विशेष रूप से भारत में आप देखो, लोग अध्यात्म के ऊपर बहुत कुछ बोलने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे आप उनको कुछ पूछो तो कुछ नहीं बोलेंगे। उनको आप पूछो कि एडवांस ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला बताओ, जाके किसी मैथमेटिशियन से पूछो, और भगवान के बैठो बताते दो घंटा। मुझे याद है मैं बंबई में बोरीवली में एक प्रोग्राम किया करता था, तो ग्रैंड रोड से बोरीवली ट्रेन में जाया करता था, वो भी शाम के समय। ग्रैंड रोड से बोरीवली शाम के समय 6 बजे के समय, यदि आपके अंदर बहुत हिम्मत चाहिए अंदर बैठने की, और ऐसे ऐसे अलग अलग पूरे जो 84 लाख योनियां अंदर मिलती हैं, तो मैं क्या क्या करता था, पहले ग्रैंड रोड से वो ट्रेन में चर्च गेट जाता था, फिर चर्च गेट में कई बार वही ट्रेन बोरीवली बन जाती थी तो कम से कम बैठने की जगह मिलती थी। तो एक बार ऐसे ही मैं ग्रैंड रोड से वो उल्टी ट्रेन चर्च गेट, फिर वहां से बोरीवली, तो सामने कुछ लोग आके बैठे, सब वहां बोरीवली के रहने वाले, तो उनका वो ट्रेन में भी बहुत अलग अलग प्रकार के उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई ताश, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड ताश खेलते हैं, एक होते वो लोग भजन करते रहते हैं, कम से कम वो तो अच्छा काम करते हैं भजन करते हैं। तो ये आए सामने बैठे, तब क्या है, 1 घंटा बोरीवली लगेगा तो फिर कुछ चर्चा होनी चाहिए, तो सामने एक अच्छा बैठा है आइटम, मुझे देखा तो मैं अपना जप कर रहा था, जप माला पे, तो एक कहता है चंदू तू भी जप किया कर, देख महाराज कैसे जप करता है। सुबह 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 उठ के जप किया कर, खैनी खाता रहता है खाली सुबह, उनकी ऐसी चर्चा चल रही। तो दूसरा बोलता है, अभी उसने फिलॉसफी चालू की क्योंकि अभी वो टॉपिक शुरू हुआ है, बोला अरे जप के लिए मन साफ होना चाहिए पहले। फिर उसने एक अपनी तरफ से एक शेर सुना दिया, मन साफ कर पहला, नहीं मन है तेरा मैला साफ कर पहला। मन है तेरा मैला साफ कर पहला, फिर उठा माला का थैला। तो यहां पर जो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम जो इतना पांडित्य दिखाए हो वो केवल तुम्हारा जो भ्रम है, इल्यूजन इन द मोड ऑफ गुडनेस, इल्यूजन इन द मोड ऑफ गुडनेस, और इल्यूजन इन द मोड ऑफ पैशन भी होता है, इल्यूजन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस भी होता है। खैर इग्नोरेंस में तो खैर इल्यूजन ही इल्यूजन है। जैसे हमारे एक प्रोजेक्ट की पार्टी थी, तो उसमें डीजे में डीजे को बुलाया था, डीजे जानते हैं ना, तो डीजे को बुलाया था। तो उसने बहुत से नॉर्थ इंडियंस थे उसमें, पंजाब से बहुत से थे हमारे दोस्त प्रोजेक्ट पार्टी में। तो डीजे ने पूछा कि जो हमारा कैप्टन था उसको पूछा कि कब तक म्यूजिक बजाऊं, तो उसने कहा भाई देख तो अभी तो शुरू कर म्यूजिक बजाना, जब 8-10 पैग हमारे हो जाएंगे ना फिर जनरेटर पे ही नाच लेंगे हम। तो बोले जनरेटर की आवाज पे ही नाच लेंगे हम। तो इतना मैंने देखा उसका मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण इतना डीप था कि एक्चुअली ऐसे ही हुआ। उनके 8-10 पैक के बाद फिर वो बेचारा, उसके तो पैसे जो हो गए थे वो चला गया, और ये लोग कोई म्यूजिक नहीं कुछ नहीं ऐसे ही। तो भगवान अर्जुन को जो बता रहे हैं कि अर्जुन ये जो तुम दिखा रहे हो इतना पांडित्य प्रथम अध्याय में, वो तुम्हारा इल्यूजन इन द मोड ऑफ गुडनेस जो तुम धर्मशास्त्र कोट कर रहे हो। इसलिए स्थितधि मुनि की जो परिभाषा आज के श्लोक में भगवान ने की है कि ऐसा मुनि जो कि दुखों से उद्विग्न नहीं होता और सुख में लालायित नहीं होता, और जो आसक्ति भय और क्रोध इन तीनों से जो मुक्त है, भगवान कह रहे हैं स्थितधीर मुनिर उच्यते। इसलिए स्थिर मन वाले मुनि के लक्षण ये हैं कि जो अविचलित मन से सुख दुख आसक्ति भय और क्रोध से ऊपर उठ जाता है। तो राधानाथ महाराज ने बहुत ही सुंदर ये कोट अपने बुक्स में लिखा था, द परफेक्शन ऑफ योगा इज टू बिकम कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम दिस मटीरियल वर्ल्ड एंड द परफेक्शन ऑफ डिटैचमेंट इज टू बिकम कंप्लीटली अटैच्ड टू कृष्णा। तो भगवान भगवद गीता सुना रहे हैं अर्जुन को, अंततः अर्जुन गांडीव धनुष उठाकर युद्ध प्रारंभ क्यों किया, क्योंकि उनकी आसक्ति अब भगवान श्री कृष्ण में हुई कि अब जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा, करिष्ये वचनम तव, एंड दैट इज द परफेक्शन ऑफ योगा। श्रील प्रभुपाद ने किताब भी इसका शीर्षक यही था, द परफेक्शन ऑफ योगा इज टू बिकम कंप्लीटली अटैच्ड एंड दैट बिगन्स विथ डिटैचमेंट फ्रॉम दिस मटीरियल वर्ल्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न?
Normally, this pain and pleasure are the driving principle for the life. How we all want to avoid the pain and we want to go towards pleasure. तो स्थित प्रज्ञ जो आदमी होता है उसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है?
He has a driving force of doing things in the same enthusiasm and passion, but for the right cause, in a right way, for the right reason. Therefore, you remember the slide that attachment is not wrong, but material attachment or mundane attachment is condemned by Krishna. And the same, when it is dovetailed for the absolute truth, which is Krishna, then that is the attachment which is very much wanted by Astita Pragya. So Astita Pragya is not a stone-hearted person, has no emotions and is just like, you know, a statue. Astita Pragya is full of sentiments and emotions, but for the right reason, for the right object, which is the absolute truth.
आपने जो आप कंपेयर किया कि एक 21st सेंचुरी का जो माइंड होता है दैट इज लाइक अ मंकी विद ऑल द एक्स वाई जेड थिंग्स, तो वहां से लेके अभी इसमें बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्थित प्रज्ञा योगी के, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन हाउ टू बिकम स्थित प्रज्ञा योगी।
नहीं, आज के श्लोक में भगवान ने बोला ना कि दुख से उद्विग्न नहीं होना,
दैट इज राइट, बट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कितना है सर उसमें, अब वो देखिए ना प्रैक्टिकल। नाउ इफ वी आर लिविंग अ लाइफ इट इज बाउंड दैट वी आर गोइंग टू हैव दिस फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस माइजरी एंड एवरीथिंग, सो हाउ कैन वी प्रैक्टिकली अवॉइड दिस थिंग्स।
सो दिस इज जस्ट द सेकंड चैप्टर,
ओके,
एंड देयर आर 16 मोर इन व्हिच कृष्णा एक्सप्लेन्स, योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड, वेर इन कृष्णा एक्सप्लेन्स लाइक कृष्णा सेज अबाउट सततम कीर्तयंतो माम यतंतश्च दृढ़ व्रत, that particular yogi, he chants my holy name, and that's how he develops that dṛḍa vṛta, determination by which he can be non-agitated when there is misery and not get carried away when there is happiness. And also in the sixth chapter again, when Krishna talks about Ashtanga Yoga, he says abhyasena tu kaunteya vairagyena cha grihyate, speaking about the mind which is the udvigna and the monkey mind. So Krishna is saying by abhyasa, by practice. So your question is how practically we can reach that level of sthita pragya by practice first. Practicing what? Practicing something which is beyond the three modes. Just like chanting Hare Krishna, which is beyond the three modes. So abhyasa of this chanting and a lifestyle which Prabhupada has given, that is Vairagya, four regulative principles. So what Prabhupada has given, these two remedies for the restless mind, is something so practical, since you have asked about the practical application. So chanting Hare Krishna and following the four principles will help us come to the platform of being equipoised.
Which four principles?
No meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex. So these are the four principles. You had something? You had something?
Hare Krishna. See, basically, अभी आपने जैसे कहा कि Krishna says कि we should not have attachment to the materialistic, that is the bhautik things. Now basically the war, that Mahabharata war actually happened because the Pandavas wanted the kingdom, basically the part of kingdom. So that also is a sort of a bhautik ichchas.
No. It was not that Krishna wanted the Pandavas to fight this war just to win a kingdom. No. It is not that. Krishna wanted to establish dharma because Yudhishthir Maharaj would be ruling the entire planet Earth. And Yudhishthir Maharaj was a dharmagya. He was dharma personified, in fact. So because Yudhishthir Maharaj was dharma personified, and if Yudhishthir Maharaj becomes the king, then yatha raja tatha praja. Then the dharma will be implemented all over, under the jurisdiction of Yudhishthir Maharaj. So it was just, you know, Yudhishthir Maharaj coming on the throne was an excuse which Krishna wanted to use to spread dharma all around on this planet. So that was the purpose.
But sir, didn't this Yudhishthir Maharaj did one mistake of, you know, gambling his wife away? Like,
well, we cannot say that it was a mistake, because Yudhishthir Maharaj was such a righteous person that the rules of gambling also he didn't want to cheat in that. And according to the rules of gambling, if the person is asking to put something on stake, then he has to fulfill. Yes, going for that gambling match was that mistake. But even in that, it is mentioned, now this is from the previous ages, that for a Kshatriya, when another Kshatriya invites him for a gambling match, then this Kshatriya, as a Kshatriya, he cannot refuse. Just like, you know, even a battle, when somebody you know, challenges another king, a Kshatriya king, for battle, then that person, the king, has to retaliate back. And the same was the norms and codes for the gambling match as well. So when Duryodhan and Shakuni, they plotted like that, that now he has got this, Khandava Prastha. So let us invite him. He is acting like a Kshatriya king. Let us invite him for gambling, which he cannot refuse. And once he comes, then Shakuni, he said, I know how to defeat him. So it was like Yudhishthir Maharaj was in a catch-22 position. You know, he was like kind of checkmated by Duryodhan and Shakuni. So that was their conspiracy and they plotted. But eventually it resulted in what? You can also say that Krishna used Yudhishthir to even go for the gambling match so that he can, you know, start up this battle and finish off this Kauravas once and for all.
Hare Krishna.
Okay, thank you all very much. Hare Krishna. Granthara Srimad Bhagavad Gita ki. Srila Prabhupada ki. Jai.